नमस्ते। हम लोग सावित्री के बुक 6 कैंटो 2 में हैं और पहला पोर्शन हम लोगों ने वो प्रश्नों के बारे में पढ़ा था जो क्वीन के माध्यम से अशुपति की पत्नी भी हैं और वो रानी भी हैं, साम्राज्ञी हैं, उनके माध्यम से श्री अरविंद हम लोगों के प्रश्न उठाते हैं। ना केवल वे प्रश्न जो हम आमतौर पर पूछते हैं, बल्कि वे प्रश्न भी जिनको हम पूछने से डरते हैं, जैसे कि क्या सच में भगवान है जिन्होंने ये दुनिया बनाई है, और यदि उन्होंने ये दुनिया बनाई है जिसमें इतना पेन और कष्ट है, ये क्यों बनाया है, यदि निर्वाण में ही जाना हमारी नियति थी तो इस सब के बीच में आके वापस वहीं पहुंच जाना जहां से हम चले थे, तो ये सारे प्रश्न वो करती हैं। और अंत में वो ये कह देती हैं कि क्या पता ये सभी माया हो, क्योंकि उनको पता है कि अंत में ऐसा उनको प्रतीत होता है कि शायद नारद जी भी वही बोलेंगे जो सब लोग कहते आए कि ये सब माया है, इल्यूजन है। तो वो प्रश्न, वो उत्तर को एंटिसिपेट करके वो कहती हैं, यदि ये सब इल्यूजन है तो फिर सर्टेनिटी कहाँ है हमारी सोल के अनुभव की। कौन जाने कि जिसको हम भगवान कहते हैं वो भी इल्यूजन हो, इटर्नल सेल्फ फिक्शन ड्रीम्ड इन ट्रांस। तो ये वो प्रश्न जिनको उठाने से मनुष्य डरता रहा है, किंतु ये प्रश्न आने वाले हैं। इसीलिए श्री अरविंद के विषय में एक बार मुझे लगता है कि लोग सेमिनार करते हैं अलग अलग, आई एम नॉट मच इन फेवर ऑफ सेमिनार्स, बहुत खिचड़ी और कन्फ्यूजन होता है, लेकिन एक केवल टाइटल देना चाहिए सेमिनार का, शेष प्रश्न जो बच गया है। तो फिर श्री अरविंद उस शेष प्रश्न का उत्तर देते हैं, समुचित उत्तर। अब यहाँ पे ये उत्तर जो प्रारंभ करती है नारद, जो हम लोग पढ़ेंगे, ये उत्तर 3-4 लाइन्स पड़ जाता है। पहले तो वो एक आम तौर पर बताते हैं कि पेन क्यों है इस संसार में और कहाँ वो उसका वास है और कब तक रहेगा, एक ओवरव्यू दे देते हैं पेन का। फिर वो पेन के उस रहस्य की ओर जाते हैं जिसके कारण हम अच्छे लोग भी सफ़र करते हैं, बुरे लोग भी सफ़र करते हैं। हम लोग अक्सर ये कह देते हैं कि अच्छे लोगों के जीवन में सब अच्छा होता है, पर पेन तो होता है, ये तो सृष्टि का नियम है। तो उसमें कौन सी चीज़ है जो इम्परफेक्ट है। फिर तीसरा, जहाँ पे हम लोग कहते हैं कि मनुष्य चुनता है उसके अनुसार से उसको सुख दुख भोगना पड़ता है, तो अब मनुष्य का चुनाव कैसे होता है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो मनुष्य को प्रेरित करती हैं जिसके कारण वह चुन पड़ता है जो उसको बाद में कष्टकर होगा। और इसके बाद एक उस प्रश्न को पिकअप करते हैं श्री अरविंद, लेते हैं, जो हम लोग आमतौर पे नहीं करते हैं। कहते हैं कि पाप के कारण दुख होता है और पुण्य के कारण सुख होता है, तो ये प्रश्न ये कि फिर रामचंद्र जी ने कौन सा पाप किया था, उनके जीवन में कितना कष्ट था, पांडवों ने कौन सा पाप किया था, द्रौपदी ने कौन सा पाप किया था, और दुर्योधन ने कौन सा पुण्य किया था। बचपन से वो राजकुमार रहा, राजकुमार छल बल से राजा बन गया, छल बल से राज्य हड़प लिया, छल बल से युद्ध में भी लड़ा और अंत में राजकुमार की तरह मरा। साथ में उसको ये सेटिस्फैक्शन भी हो गया, चाहे मिथ्या सेटिस्फैक्शन, कि नहीं मैंने अपने शत्रुओं का नाश कर दिया। दे नेवर डाइड, बट अश्वत्थामा ने आके ऐसी कुछ रिपोर्ट किया और वो बड़े शांति से मरा, जिसको आम तौर पे हम कहते हैं। तो क्या दुर्योधन इतना बड़ा धर्मात्मा था, और यदि इतना बड़ा धर्मात्मा था तो इस जन्म में उसका ये डाउनग्रेड कैसे हो गया, अपग्रेड होना चाहिए। और यदि युधिष्ठिर इत्यादि इतने बड़े पाप आत्मा थे कि उनको जीवन में कष्ट भोगना पड़ा, तो अचानक वो ऐसी सेंटली नेचर के साथ कैसे आए। तो ये सारे प्रश्न हैं, इनका उत्तर देते हैं कि जब भगवान भी जब धरती पर आते हैं तो उनको भी कष्ट झेलना पड़ता है, और उनका कष्ट मानव पीड़ा से कहीं अधिक होता है। और इसको, ये एक ऐसा रहस्य जिसको लोग टच नहीं करते हैं। कई बार लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि जीसस क्राइस्ट तो सूली पर लटक गए, तो वो भगवान कहाँ से थे। वो भगवान इसीलिए थे क्योंकि वो सूली पर लटक गए, साधारण व्यक्ति भाग खड़ा होता, या वो मिरेकल कुछ दिखाता और सूली गायब हो जाती है सब। पर यही तो क्राइस्ट की खूबी है। सोक्रेटिस के बारे में, सोक्रेटिस इसलिए हैं कि उनको पूरा अवसर मिलता है जेल से भागने का, उनका शिष्य लाकर के उनके लिए कह देता है कि मैंने सबको ब्राइब कर दिया है, अब सब मेरे हाथ में है, आप बस चलिए। और सोक्रेटिस कहते हैं, नहीं, मेरी जो आंतरिक आवाज है वो कह रही कि नहीं जाऊंगा, मुझे हलाल चाहिए, और वो विष पान करके वो मृत्यु को प्राप्त होती, इसलिए वो सोक्रेटिस है। वही चीज श्री कृष्ण और श्री राम के जीवन में हम देखते हैं, श्री रामचंद्र जी के जीवन में देखिए, भगवान है, उनको कोई जरूरत नहीं थी स्वीकार करने की, वो कह सकते थे कि ठीक है पिताजी, आपने वचन दिया था आज के जमाने के आपका वचन था, आपने रानी को दिया, मुझे क्या पता, लेकिन मैं तो कायदे से हकदार हूं. ही वॉज द लीगल हायर. उस समय की सभ्यता के अनुसार ही वॉज द हायर ऑफ द थ्रोन. सबसे बड़े हैं, सबसे योग्य हैं, और प्रजा उनको चाहती है. तो देखा जाए तो वो तो कह सकते थे कि आपने जो किया आपका ये ठीक है, मेरा आपके प्रति द्वेष नहीं है, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हो कि मैं राज्य त्याग कर दूं. लेकिन वो त्याग करते हैं, स्वेच्छा से वरण करते हैं. और अगर आधुनिक समय में जाएं तो अब इस धारा को जब हम पकड़ें तो हम देखेंगे कि श्री अरविंद ने अपने देह त्याग का रहस्य यहां पर उद्घाटित कर दिया है. लोग ये पूछते हैं कि श्री अरविंद तो स्वयं भगवान थे, तो उन्होंने कैसे शरीर उन्होंने त्याग कर दिया. तो वो रहस्य यहां पे खुद ही उद्घाटित कर गए हैं इस कैंटो में, अपना भी और सीमा का भी, दोनों के फिजिकल डिपार्चर का रहस्य वो उद्घाटित कर देते हैं. तो ये सारी चीजें. और अंत में एक प्रश्न जो रह जाता है कि हमें किसने इस जगह पर धक्का दिया या ढकेला, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना कि आत्माओं को भेज दिया वो. यहां नारद बड़ा अद्भुत उत्तर देते हैं, हमने स्वेच्छा से चुना, हमने चुना. कि ये कितना अद्भुत, अट्रैक्टेड बाय ए डार्कनेस, उसके अंदर कुछ है. आपस में बात की हम लोगों ने कि वहां चले, यहां तो प्रकाश, बहुत प्रकाश है, यहां आनंद ही आनंद है, कुछ एडवेंचर भी होना चाहिए. तो हमने वो चुना. वो जैसे वो एडवर्टाइजमेंट आता है ना आजकल कि वो एक कोका कोला के लिए क्या क्या व्यक्ति करता है, तो उसमें तो इसमें जो मुख्य बात यह है कि इट इज नॉट अबाउट कोका कोला, दो एडवर्टाइजमेंट भी दिखाता है. इट द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, द जॉय ऑफ एडवेंचर. तो उससे क्या होता है, जो डिलाइट है, आनंद है, वो दुगना तिगुना अनंत गुना होता है. तो उसके लिए ये पैसेज सोल चुनती है. तो ये सारी चीजें इस कैंटो में आती हैं. हम लोग प्रारंभ करेंगे नारद के उत्तर से. पहले तो वो सीधा सीधा रानी को कहते हैं कि रानी, तुम जो कह रही हो कि जीवन में केवल दुख है दुख है, तुमने तो, तुम्हारी बेटी की आज पीड़ा है इसलिए तुम दुख कह रही हो, आज तक तुमने ये नहीं सोचा. तो जब हम दुख से पीड़ित होते हैं तो हम अचानक कह बैठते हैं कि जीवन में दुख है दुख है, मुझे ही भगवान ने क्यों चुना है. लेकिन अगर हम जीवन को एकदम निष्पक्ष भाव से देखें तो हम देखेंगे कि सुख भी है दुख भी है. और वास्तव में अगर हम केवल क्षणों को देखें, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें, तो सुख के क्षण ज्यादा होते हैं. लेकिन हम दुख स्ट्राइक्स अस एज ए कंट्रास्ट, क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये एक इंट्यूटिव फीलिंग है कि दुख नहीं होना चाहिए. कई बार मैं जड़वादियों से ये बात होती है, जड़वादी कहते हैं कैसा भगवान है जिसने दुख है. मैंने कहा आप तो जड़वादी हैं, आपको क्या लेना देना है भगवान से. ये तो मैंने कहा लेकिन आप इस बात का प्रमाण दे रहे हो कि भगवान है. कहते कैसे, बिकॉज यू हैव एन इंट्यूशन दैट वर्ल्ड शुड बी ब्यूटिफुल. या आपके अंदर कहां से ये श्रद्धा कि संसार सुंदर होना चाहिए. आप तो जड़वादी हो, आपके अनुसार तो संसार होना ही नहीं चाहिए. एक घटना घट गई, अघटन घटन, कि वो एक कहां से वो एक बीज था जो ब्रह्मांड में विस्फोट कर गया, बस वहीं पर रुक जाना चाहिए था, लेकिन मनुष्य बन गया. और आप आज प्रश्न कर रहे हो कि नहीं संसार में पीड़ा क्यों है, यही इस बात का प्रमाण है कि भगवान है. क्योंकि हम ये परफेक्शन चाहते हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये कि संसार में दुख नहीं होना चाहिए, ईविल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक दिव्यता का अंश है. तो अब नारद वहां से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि कई बार जब हम लोग इस दुख के पीरियड से जाते हैं तो अब एडवर्स फोर्सेस क्या करती हैं, वो दुख को इतना बड़ा चढ़ा के दिखाती हैं कि वो आपको ऐसा करेगी कि जैसे दुख ही सब कुछ है. और कई बार उसमें वो धकेल करके एकदम महाअंधकार में ले जाती हैं. तो यहां पर नारद कहते हैं, वॉज देन द सन ए ड्रीम बिकॉज देर इज नाइट. अच्छे क्षण भी हैं जीवन के, उनको भी देखना चाहिए, सुंदर बातें भी होती हैं. कई बार लोग कहते हैं, कई बार जब पीड़ा से निकलते हैं, ये हम लोग काउंसलिंग में भी, हम लोग मतलब ये मेरा एक तरीका है कि जब कोई पीड़ा के उससे, मान लीजिए कुछ टूट गया फूट गया बाहर आए, तो क्या करना चाहिए. मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई तो जिसको आप चेरिश करते थे, तो क्या करना चाहिए, उसकी सुंदर स्मृतियों को सजो, सुंदर स्मृतियों को. ये एक बहुत सिंपल उपाय है. आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसको आप चेरिश करते थे, वो आपके जीवन से दूर चला गया, सुंदर स्मृतियों को सजो. वे क्षण गिनो जो आपके, जिन्होंने आपके जीवन में एक नई स्फूर्णा का विस्तार किया, दैट इज वॉट इज इंपॉर्टेंट. लेकिन हम वो पीड़ा को पकड़ करके, पीड़ा हमको नहीं पकड़ती, हम पकड़ लेते हैं. वो तो कब खत्म हो गई वो घटना, लेकिन उस घटना को हम पकड़े रहते हैं. तो यहां नारद बता रहे वॉज देन द सन ए ड्रीम बिकॉज देर इज नाइट. एक ही शब्द में इतनी पावर है, एक ही वाक्य में. हिडन इन द मॉर्टल्स हार्ट द इटर्नल लिव्स. He lives secret in the chamber of thy soul. A light shines there, nor pain nor grief can cross. शुरू में एक अद्भुत उपाय बताते हैं. माता जी की बहुत सुंदर लेखनी है, वॉल्यूम 2 में है, टू नो हाउ टू सफर. तो वहां ये नहीं है बता रही कि सफरिंग को, कई लोग सफरिंग की गॉस्पेल बना देते हैं, मार्टिरडम, मैं तो पीड़ा के लिए जन्मा हूं, भगवान मुझे और पीड़ा दे. शुड नॉट मेक ए गॉस्पेल ऑफ सफरिंग. कहते हैं कि एक हमारे अंदर एक स्थान है जो हर प्रकार की पीड़ा और कष्ट से अछूता है. इसीलिए शायद उसको कहते हैं, भगवान का एक नाम है अच्युतम, जो गिरता नहीं कभी, अनटस्ट, अनसॉन. एक जगह शेरविंद वर्ड यूज करते हैं, अनसॉन बाय ग्रीफ. उसको ग्रीफ टच नहीं कर सकती, और वो हमारी चैत्य सत्ता है. मां कहती है कि पीड़ा एक द्वार खोल सकती है, उसको ढूंढो. शायद इसीलिए आई है जीवन में कि हम उस चीज को ढूंढ सकें जिसकी डायमंड लाइट में कोई भी दुख कष्ट पीड़ा नहीं आ सकता. तो यहां नारद पहले उसका संकेत देते हैं कि नारी, ये रानी, ये समय इसका नहीं है कि तुम वाद विवाद, ये क्यों है वो क्यों है. इस समय तुम अपने अंदर उस भूमि को ढूंढो, उस स्थान को जहां पे ग्रीफ आ नहीं सकता और जिसकी लाइट में पेन नहीं बच सकता है. लेकिन उसको क्रॉस करने के लिए एक स्पेस से गुजरना पड़ता है. वो स्पेस क्या है? ए डार्कनेस स्टैंड्स बिटवीन दाई सेल्फ एंड हिम. दाउ कैंस्ट नॉट हियर और फील द मार्वेलस गेस्ट. दाउ कैंस्ट नॉट सी द ब्यूटिफिक सन. इसका एक और उदाहरण मैं देता हूं, कई बार प्रैक्टिकल उसमें, कि आपकी बहुत पीड़ा है, कष्ट है, जीवन में सब कुछ है, अगर अचानक आपके सामने भगवान आ जाए क्या होगा? मतलब तो मैं रियल लाइफ की आपको स्टोरी बता रहा हूँ. हाँ, एक अपनी, खैर मैं नाम नहीं लूंगा, साधिका की 3 साल की थी, अब वे नहीं है. तो उनके पिता की असमय मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु. तो वो और उनकी मम्मी, माँ, जगन माँ, डिवाइन मदर, अपनी यहाँ पे माँ से मिलने के लिए गए. तो नेचुरल, अब वो 40s में हैं जो लेडी हैं, और बच्ची है 3 साल की है, तो अब सोचिए उसके अंदर क्या गुजर रही होगी. तो माँ से मिलने जाते हैं हृदय को भारी किए हुए. तो माँ जब उनको देखती हैं तो कोई गीता का ज्ञान कुछ नहीं, माँ हाथ फैला के खड़ी हो जाती हैं, उनकी आंखों में एक आंसू है, वो जानती है मनुष्य की पीड़ा. फिर स्माइल करके माँ कहती हैं कि तुम मिलना चाहती हो किससे? तुम्हारे पति से. ये तो उन्होंने अपेक्षा ही नहीं की थी. यू वॉन्ट टू सी हिम, यू वॉन्ट टू मीट हिम. भागवत में ऐसी कथा आती है जहां नारद कहते हैं कि तुम मिलोगे, तो वो बेटे को बुलाते हैं. तो बेटे से, जब राजा रानी बड़े दुखी हैं कि मेरा बेटा चला गया, तो पूछते हैं बेटे से कि तुम, मैं तो इतना कष्ट ये सब है. वो बेटा तो अब अपने आत्मस्वरूप में कहते, किसका बेटा हूं मैं, आप कौन है, मेरा कोई परिचय नहीं है आपसे. बड़ी वो उस स्टोरी को अगर कोई अनचेस्ट माइंड पढ़ेगा तो बड़ी क्रूएल लगती है. मैंने बहुत बचपन में पढ़ी थी, मुझे लगा अरे बेटा कैसे बोल रहा है कि आप कौन है, ये कहानी क्या है. लेकिन आत्म तत्व में यही परिचय होता है. तो जब वो ये सुनती हैं तो फिर कहती है, माँ आपके पास है तो मुझे फिर क्या पीड़ा है. मदर जस्ट टेक्स देम इन हर आर्म्स, दैट्स इट. कहती उसके बाद कभी मेरी माँ की आंखों में आंसू नहीं, कुछ नहीं. तो ये भगवान का तरीका होता है. तो वो कहती, लेकिन कोई चीज है जो हमें और उनको, उनके बीच में आती है. अब वो क्या चीज है? ओ क्वीन दाई थॉट इज ए लाइट ऑफ द इग्नोरेंस. क्या बात है, इग्नोरेंस की लाइट क्या होती है? इग्नोरेंस की लाइट ये होती है कि हम अंदर हैं, हम कहते हैं सूर्य नहीं है, ये एक लाइट है इग्नोरेंस की. क्यों लाइट है? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं सूर्य होना चाहिए, और वो हमको वास्तव में, इट शुड इंस्पायर अस टू सीक द सन. सो देयर इज ए लाइट ऑफ द इग्नोरेंस, इट्स ब्रिलियंट कर्टेन हाइड्स फ्रॉम द गॉड्स फेस. इट इल्यूम्स ए वर्ल्ड बॉर्न फ्रॉम द इनकॉन्शियंस बट हाइड्स द इमॉर्टल्स मीनिंग इन द वर्ल्ड. वो सब देख रही है जो इंद्रियां दिखा रही हैं. लाइट ऑफ द इग्नोरेंस, माइंड इज ए लाइट ऑफ द इग्नोरेंस, जो दिखा रहा है आपको, समझा रहा है, सब कुछ दिखा रहा है दृश्य, लेकिन दृश्य के पीछे का सत्य नहीं दिखा रहा है. इसीलिए जीवन में एक चीज स्मरण रखनी चाहिए हमेशा, सत्य हम लोग नहीं जानते हैं. कई बार कहते हैं ना, जो देखा प्रमाण, जो सुना प्रमाण. हम वो देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं और हम वो देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है, ये मान के चलिए। हम वो सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, आप सब चीज बोल दीजिए, हम वो पकड़ लेंगे उस एक शब्द को जो हम सुनना चाहते हैं। और क्योंकि हमारे माइंड में ऑलरेडी एक हाइपोथेसिस चल रही है और हम वो सुनते हैं जो हमें सुनाया जाता है, सुना देखा, लेकिन मन उसी को लाइट समझता है ना, लाइट ऑफ इग्नोरेंस, लेकिन उसके पीछे का सत्य किसको पता होता है। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि यू डोंट नो बिकॉज इज द लाइट ऑफ द इग्नोरेंस, दाई माइंड्स लाइट हाइड्स फ्रॉम दी द इटर्नल्स थॉट। माइंड तो दृश्य दिखा रहा है, अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त। अब उस समय की अगर जीवन को देखें तो अभिमन्यु की जिस दिन मृत्यु हुई होगी, अगर सारे हमारे ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स होते तो ऊपर आता डिपेंडिंग ऑन TMC या BJP या कुछ भी, BJP के लोग डिफेंड कर रहे होते कि कृष्ण तो भगवान है, और दूसरे वाले बोल रहे होते कैसे भगवान है, देखो एक यंग अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। अगर भूले भटके श्री कृष्ण आ जाते तो श्री कृष्ण कहते अरे छोड़ो तुम लोग, ये मृत्यु नहीं है, अभिमन्यु आज से अमर हो गया है, अब ये बेंचमार्क बन गया है जीवन में। वॉरियर अर्जुन के नाम से नहीं लोग कहते, अर्जुन जैसा योद्धा लोग कहते, अभिमन्यु जैसा, हम लोग मिलिट्री में इसको इट्स लाइक अभिमन्यु हैज बिकम द बेंचमार्क, इमॉर्टल हो गया मृत्यु से, ये भगवान का मीनिंग था और अभिमन्यु ये वर्ण करके आया था। और ऐसे लोग हैं जो यंग एज में जिनकी डेथ, वो वर्ण करके आया था कि नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है जैसे सब लोग करते हैं कि मैं 100 साल जी लिया, 90 साल जी लिया, मैं तो वो कुछ करना चाहता हूं जो कुछ ही समय में जो लोग लंबी आयु में नहीं कर पाते हैं। कर्ण और अपने पिता अर्जुन को पीछे छोड़ गया, ही वॉज ए ग्रेट वॉरियर बाय द वे, ये लोगों को बहुत भ्रांति है कि 16 साल का था और ही वॉज वो बच्चा नहीं था, और केवल उस दिन नहीं, इवन अदरवाइज अभिमन्यु वॉज ए ग्रेट वॉरियर, इवन ए वॉरियर लाइक भीष्मा, उसको भी अभिमन्यु के सामने समझ गए कि ये कोई साधारण योद्धा नहीं है जिसको स्वयं साक्षात श्री कृष्ण भगवान ने ट्रेन किया हो, ही वॉज नॉट एन ऑर्डनरी वॉरियर, लेकिन वो आया था इसलिए। तो अब वॉट इज दैट Immortals meaning, thy heart's hopes hide from thee the eternal's will. हम लोग आमतौर पर क्या करते हैं, हमारी मर्जी नहीं हुई तो भगवान बड़ा क्रूएल है, अरे एक बार मर्जी के पहले भगवान से भी पूछ लेते कि आपकी मर्जी क्या है। अक्सर लोग आते हैं कुछ कुछ कर देते हैं, जैसे अभी कुछ समय पहले की ये अक्सर मैं देखता हूँ, कोई आया तो ब्लड प्रेशर देखिए या मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया कि नहीं, तो मैं पूछता हूँ कि क्यों आपको ऐसा लगता है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो ब्लड प्रेशर देखा तो बढ़ा हुआ है, तो मैं कहता हूँ कि ठीक है मैं आपकी दवाई बढ़ा दूँ, नहीं मैंने दवाई 1 महीने पहले बंद की हुई है, मैंने कहा फिर आपने दवाई तो मुझसे बिना पूछे बंद कर दी, लेकिन अब आप ब्लड प्रेशर दिखाने, जब आपने दवाई बंद की तो मुझसे पूछा नहीं आपने कि मैं बंद कर रहा हूँ ये करना उचित है कि नहीं, कुछ हो जाता तो जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर डाल देते, सारा संसार कहता कि देखता वो कॉपी में किसकी दवाई लिखी हुई है, आलोक भाई की दवाई लिखी है, देखो कैसी दवाई दी थी कि वो तो चला गया, तो हम नहीं, ये होता है बहुत डॉक्टरों के जीवन में होता है। कहने का अर्थ ये कि जब हम कुछ करने जाते हैं तो क्या हम भगवान से कहते हैं कि आपकी रजा क्या है, आपकी मर्जी क्या है, क्या हम उनको ऑफर करते हैं कि हम इस दिशा में जा रहे हैं संभाल लेना भगवान, ये भी हम कर दें तो वो संभाल लेंगे, वो कहेंगे चल मेरे साथ, लेकिन जब हो जाता है तब हम कहते हैं कि मेरे जीवन में ये क्या हो गया, वो क्यों हो गया। Thy heart's hopes hide from thee the eternal's will, earth's joys shut from thee the immortal's bliss. Immortal's bliss कहाँ नहीं है सच पूछिए तो, हमने तो जा करके पार्टी क्लब डांस ड्रिंक्स, तो ये तो चलो यहाँ चले वहाँ चले, कबीरदास जी ने कितनी सुंदर इस घट अंदर बाग बगीचे, आप जब उस चीज को ढूंढेंगे तो फिर कहाँ आपको जाने की जरूरत है, तो आप ढूंढ रहे हो तो उस जॉय को नहीं हम फील कर पाते हैं क्योंकि हम समझ रहे हैं कि इससे मुझे जॉय मिलेगा, ये ओरिजिनल वायरस पेरेंट्स डालते हैं, सॉरी टू से दैट, फिर शिक्षक डालते हैं, फिर समाज डाल देता है कि तुम्हें ये प्राप्त करोगे तभी तुम खुश रहोगे, तो बच्चा तो भूल जाता है कि मैं तो जन्म से खुश था, मुझे प्रॉब्लम क्या थी, कोई बच्चा बड़ा हो के पूछ ले कि पापा मम्मी क्या मैं बहुत दुखी था जन्म लेके, नहीं बच्चे तुम तो खुश थे। तो मैं जब खुश था बिना किसी चीज के, आपने मुझे ये क्यों थॉट डाल दिया कि ये मिलेगा तभी मैं खुश होऊंगा। तो ये भी एक वो एक हम लोग डाल देते हैं। डेंस रोज द नीड ऑफ ए डार्क इंट्रूडिंग गॉड द वर्ल्ड्स ड्रेड टीचर द क्रिएटर पेन। क्रिएटर क्यों कह रहे हैं, हर नई चीज प्रसव पीड़ा के साथ जन्म लेती है। क्यों? क्योंकि हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। तो डार्क इंट्रूडर गॉड, लेकिन भगवान कहते हैं चलेगा जगन्नाथ का रथ, चलोगे चलोगे, वैसे भगवान क्या आप चलने से क्या मिलेगा हमें, नहीं नहीं हम तो भाई मांग लेते हैं, हम देते नहीं, पहले चलोगे तो बोलो, अच्छा कितना किराया होगा, कहाँ, ये सब बोल रहे हैं। तो अब भगवान के पास दो ऑप्शन है, एक तो जबरदस्ती ले चलेंगे आपको, अगर आप सच में वो आपके भक्त रहे हो कभी तो पकड़ करके ले चलेंगे, कहते हैं तेरे से मैं पूछने नहीं आया हूँ, जैसे आजकल के बच्चे कहते हैं ना, आई एम नॉट आस्किंग यू, आई एम इन्फॉर्मिंग यू। तो भगवान कहेंगे मैं पूछने नहीं आया हूँ, तुझे लेने आया हूँ। आप बोलोगे भगवान आप कितने क्रूएल हो, तो वो ऐसा नहीं है। तो पेन के रूप में भी आते हैं भगवान, क्योंकि जब उनकी जैसे कुरुक्षेत्र में उन्होंने प्यार से समझाया कि छोड़ दे ये सब, पांच गांव दे दे, लेकिन नहीं। देंस रोज द नीड ऑफ ए डार्क इंट्रूडिंग गॉड। इंट्रूडिंग क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में दखल दे देता है। अच्छा खासा हमारा जीवन चल रहा है लेकिन वो आकर के दखल दे देता है। लेकिन इट हेल्प्स अस टू ग्रो द वर्ल्ड्स ड्रेड टीचर द क्रिएटर पेन। इट्स नॉट नेसेसरी। माँ कहती कि बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है कि लोग उस जीवन को चुनते हैं जो वास्तव में संघर्ष पीड़ा कष्ट द ऑर्डिनरी एंड पेनफुल स्कूल ऑफ सफरिंग। क्यों? क्योंकि लोग इन्फिनिटी इटर्निटी इनसे डरते हैं, उनको अपना सेफ लिमिट चाहिए। क्योंकि अगर आपने इन्फिनिटी और इटर्निटी का आपको स्पर्श मिल गया, उसके बाद अपने कार्ड में ये नहीं लिख सकते हो कि डॉक्टर महान, उसके बाद आपकी क्या पहचान। तो ये समस्या होती है। तो वो पेन आता है टू रिलीज अस। दाई ग्रीफ इज ए क्राई ऑफ डार्कनेस टू द लाइट। इस तरह से वो बहुत लंबा बताते रहते हैं। फिर यहां पर बाई पेन एंड जॉय द ब्राइट एंड टेनेब्रस ट्विंस बताते हैं, जहां एक है दूसरा बैठा हुआ है। आप मान के चलो वही चीज जो आपको खुशी दे रही है, ये जनश्रुति में कहते हैं बहुत सही कहते हैं, वही चीज आपको दुख देने का सामर्थ्य रखती है और देगी, क्योंकि आप इन दोनों से पोषित होकर ग्रो करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपको सुख दे, ऐसा नहीं होगा, आपको दोनों से। सो दे आर टेनेब्रस ट्विंस, एकदम जुड़े हुए हैं, सियामीज ट्विंस हैं, अलग नहीं होते, एक है दूसरा पीछे में वेट कर रहा है, भैया तुम चले जाओ फिर मैं जाऊंगा। फिर वो कहता है मैं तो देख बहुत इसको पीट चुका हूं, थोड़ी देर के लिए तू आ जा। तो जॉय चला जाता है, जॉय कहता है चलो खेला खेलो, तो आप कहते हो बड़ा अच्छा समय आ गया। नहीं, अच्छा समय अभी आने वाला है, पेन आएगा फिर से आपको याद दिलाने। तो टेनेब्रस ट्विंस, द इनएनिमेट वर्ल्ड परसीव्ड इट्स सेंशिएंट सोल एल्स हैड द इनकॉन्शियंट नेवर सफर्ड चेंज। क्योंकि पेन होता है तो हम प्रश्न करते हैं कि जीवन क्या है, संसार क्या है, हम कौन है, भगवान क्या है। पेन इज द हैमर ऑफ द गॉड्स टू ब्रेक ए डेड रेजिस्टेंस इन द मॉर्टल्स हार्ट, हिज स्लो इनर्शिया एज ऑफ लिविंग स्टोन। देखिए मनुष्य को परिभाषित किया है यहां श्री अरविंद ने बड़े अद्भुत ढंग से, लिविंग स्टोन। मैटर है ना, प्राणवंत है, स्टोन क्यों रेजिस्ट कर रहा है। शेरविन कहते हैं कि वेयर फोर गॉड्स हैमर्स दिस वर्ल्ड सो फियर्सली, ऐसा लगता है कि कितना क्रूएल है भगवान। कहते हैं क्योंकि मनुष्य इतना कठोर है, इतना पत्थर की तरह है, अगर मनुष्य भी सूक्ष्म बनता जाएगा, मनुष्य के अंदर एक सॉफ्टनेस आएगी, तो भगवान के भी तरीके चेंज करने जाएंगे। वो फिर सोनार की तरह टक 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 सुंदर वो करेंगे। आप लोहा बनोगे तो लेकर हथौड़ा मारेंगे। द पेन इज ए हैमर ऑफ द गॉड्स टू ब्रेक ए डेड रेजिस्टेंस in the mortal's heart, his slow inertia is of living stone. If the heart were not forced to want and weep, wahi jagate hain, want bhi, aur wahi fir weeping bhi, rulate bhi hain. His soul would have lain down content at ease and never thought to exceed the human start and never learned to climb towards the sun. This earth is full of labor, packed with pain. ये सृष्टि का नियम है. बड़ी इंटरेस्टिंग है. पेन का एक एग्जाम्पल कल ही एक स्टोरी में आ रहा था, भीष्म पितामह की कहानी. देखिए भीष्म पितामह 8 वसु हैं, तो वो सब कर्स्ट हैं, कर्स्ट होके आते हैं धरती पर. 7 तो फट से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन भीष्म रुक जाते हैं. अब यहां तक सबको पता है भीष्म की सारी स्टोरी, अंत में शरसैया इत्यादि, ये सब पता है. लास्ट पार्ट उस स्टोरी का बड़ा इंटरेस्टिंग है, मृत्यु के बाद क्या होता है. अब बाकी जो 7 वसु थे वो वापस चले जाते हैं अपने लोक में, कहां से आए थे, जो भी स्वर्ग लोक या सेलेस्टियल वर्ल्ड. भीष्म पितामह अपग्रेड होके जाते हैं, महारलोक में जाते हैं. दिस द स्टोरी बिकॉज ही हैज टेकन. अब देखिए वो कर्स नहीं है, वो लगती है कर्स है, वशिष्ठ ऋषि के मुख से निकली है, तो वो कर्स में भी एक कुछ और जुड़ा हुआ है. वशिष्ठ ऋषि ने एक प्रकार से उनको संभावना दे दी कि तुम लोग अभी जानते नहीं हो, नंदिनी को चुरा रहे हो, अभी तुमने एफर्ट और उसका जॉय और उससे क्या होता है नहीं मालूम है, जाओ धरती पर चले जाओ. हम लोग कर्स कहते हैं, धरती पर आके लेबर केवल भीष्म करते हैं, और जब भीष्म की मृत्यु होती है तो उन 7 वसुओं के साथ नहीं जाते हैं, वो ऊपर चले जाते हैं. इट्स अपग्रेडेड. सावित्री में एक लाइन है, गॉड कम डाउन एंड ग्रेटर बाय द फॉल. तो ये पार्थिव जगत में अर्थ के अंदर ही ये संभव है. अपग्रेड करना है सॉफ्टवेयर को, अर्थ पे आ जाइए, और नहीं तो आप अपने टाइपल वर्ल्ड में जो भी हैं देवता दानव. हिज विल, भगवान की विल, मस्ट बी वर्कड आउट इन ह्यूमन ब्रेस्ट अगेंस्ट द ईविल दैट राइजेस फ्रॉम द गल्फ्स, अगेंस्ट द वर्ल्ड्स इग्नोरेंस एंड इट्स ऑब्स्टिनेट स्ट्रेंथ, अगेंस्ट द स्टम्बलिंग्स ऑफ मैन्स पर्वर्ट विल, अगेंस्ट द डीप फॉली ऑफ हिज ह्यूमन माइंड, अगेंस्ट द ब्लाइंड रिलक्टेंस ऑफ हिज हार्ट. अब वर्कड, ये वर्ड देखिए एक एक वर्ड, वर्कड आउट नॉट थ्रैश्ड आउट. भगवान ऐसे नहीं है, मेरा विल है, आई विल कंपेल यू, नहीं, क्योंकि वो ऑटोमेटॉन होता है. इवोल्यूशन और एक मशीन को बनाने में यही अंतर है. इवोल्यूशन में आपकी चॉइस है कहीं ना कहीं, तब आप ग्रो करते हो. इसलिए फ्रीडम, फ्रीडम का प्रिंसिपल क्यों है, ताकि यू विल लर्न एंड ग्रो, और वो सारी लर्निंग में आपकी ग्रोथ हो रही है साइमल्टेनियसली. तो दैट इज वाई इट इज नॉट लाइक कि भगवान अपनी विल को इम्पोज करके आपको एक कुछ, वो तो आर्टिफिशियल होगा, सुंदर होगा लेकिन फॉल्स होगा. तो दैट इज वाई हिज विल मस्ट बी वर्कड आउट अगेंस्ट द ईविल. सब कुछ है, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं ठीक है बच्चा, तो कितनी दूर जाएगा. शेरविन से किसी ने कहा था ना, आपने इतनी फ्रीडम दे रखी है अपने शिष्यों को, इवन द फ्रीडम टू हैंग हिमसेल्फ. कहते हैं हां, सुपरमैन इसी तरह से क्रिएट किए जाते हैं. यू कैनॉट क्रिएट सुपरमैन बाई फोर्स कि बैठा दिया सब लोग इस समय यहां पे ये काम करेंगे, फ्रीडम देके. तो उसके थ्रू, लेकिन क्यों भगवान ये कर सकते हैं, बिकॉज ही इज गॉड, ही नोज कहां तक जाओगे तुम, जाइए आप कहां जाएंगे, लास्ट में मैं ही खड़ा हूं वहीं पर खड़ा, एक अनसरपासेबल बैरियर. प्रेयर्स एंड मेडिटेशन में माता जी की एक लाइन है, दाउ आर द अनसरपासेबल बैरियर अगेंस्ट ऑल ईविल. आप ईविल कितना भी बढ़ जाए, एक टाइम आता है जब उसके सामने कृष्ण खड़े होते हैं, इवन निहत्ते इट विल स्टॉप. तो उसको मां कहती है दैट अनसरपासेबल बैरियर, लेकिन मां कहती है डिवाइन लव. वहां वो जैसे ही जाता है या तो वो चेंज हो जाता है, ईविल के अंदर जो ट्रूथ है उसको निकाल देते हैं भगवान. आउट ऑफ ईविल ही ब्रिंग्स गुड, दैट इज हाउ ही वर्क्स. तो उनका तरीका वर्कड आउट यहां पर इसमें, the spirit is doomed to pain till man is free. Pain is the hand of nature sculpturing men to greatness and inspired labor chisels with heavenly cruelty and unwilling mold. Pain is the hand of nature. अब पूछिए आप, एक साधारण बच्चा होता है, उसको आप कहते हो कि पनिशमेंट देते थे पहले, अभी तो बैन हो गया है, तो आप कहते, हम सब उससे गुजर चुके हैं, वो तख्ती लेके जाते हैं क्लासरूम में, पनिशमेंट मिलता, बाहर खड़े हो जाओ, 10 बार उठ बैठ करो, ये सब। अब वो और बात है कि हम लोग मस्ती करते थे क्योंकि मास पनिशमेंट लेके आते थे बाहर तो मजा आता था कई बार जानबूझ के। लेकिन अब आप देखिए डिफरेंस क्या है, आपको पनिशमेंट के तौर पे कह दिया गया आप 10 बार उठ बैठ करो। अब आप कह रहे हो ये क्या है, ये टीचर हमारा कैसा है। अब आपको इसके साथ एक चीज जोड़ दी जाए कि तुम 1000 बार उठ बैठ करोगे तो तुम गामा पहलवान बन जाओगे। अब देखिए चेंज हो गया ना सारा। आप कहोगे सच में, हाँ तो मैं 1000 बार क्यों, 10,000 बार करूंगा। वही चीज एक आपने उसका रीजन बता दिया। तो अब यहां पर वही भाव है, पेन इज द हैंड ऑफ नेचर स्कल्पचरिंग मैन। कई ऐसी स्टोरीज है ना बड़ी सुंदर, वो कराटे किड जिसमें वो इस तरह से 36 चेंबर्स ऑफ सेओलिन, वो तो सीखना चाहता है हाईएस्ट मार्शल आर्ट, तो मार्शल आर्ट पहुंच जाता है 36 चेंबर, वहां जो बैठे हुए हैं जो योगी वो कुछ नहीं, वो देखते हैं ऐसे बस करते हैं और वो भाग, वो सीधा गिर पड़ता है नीचे, कहता है ये शक्ति कहां से आई। एक्चुअली देयर इज नथिंग लाइक 36 चेंबर, सीक्रेट ही है। लेकिन आप स्टार्ट करते हो फर्स्ट से, तो यू हैव टू गो थ्रू कि पानी उठाओ, सब ऊपर नीचे ले जाओ, तो ये ट्रेनिंग है, हैंड ऑफ नेचर स्कल्पचरिंग मैन। और पुराने समय के जो योद्धा होते थे ऐसे ट्रेंड होते थे, ऐसे नहीं कि सीधा अर्जुन पहुंच गए गांडीवधारी अर्जुन, उसके पहले जो उन्होंने ट्रेनिंग हुई है, यू नो पीपल लाइक टू बी, यू नो ऑल इवन मिलिट्री, आप देखो एक सिंपल कमांडो ट्रेनिंग, कमांडोज की छोड़ दीजिए, जो एक्चुअल मतलब इन्फेंट्री के कमांडो है, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो जैसे सिग्नल्स या उनमें कमांडो, 3 दिन 3 रात आप सोओगे नहीं, चलते रहोगे, 10 किलो वजन उठा करके, आपको राशन का पानी मिला उसमें, आपको भोजन आपको ही मैनेज करना है, छुरी है एक जलाने की, वो है सांप मिले तो काट करके खा जाओ, उसके बाद में आप कहते हो कि यू नो ही इज ए कमांडो। अब उसके बाद भी लोग अगर इतनी रेस्पेक्ट नहीं दें तो अब मतलब इट इज ए ट्रेमेंडस ट्रेनिंग। ऐसे नहीं कि बस बन गया आज एक तमगा लग गया, उसके पीछे जो होता है वो इम्पॉर्टेंट है। कोई भी चीज किसी भी आप विधा में चले जाइए, वो लगती बड़ी सिंपल है लेकिन उसके पीछे जो नॉलेज गई है, जो सब कुछ किसी व्यक्ति, ये त्याग तपस्या, कोई भी आप विद्या के पीछे चले जाइए वो, या कला के पीछे चले जाइए, दिस ट्रेमेंडस सैक्रिफाइस, दिस ट्रेमेंडस तपस्या। सो इट इज द हैंड ऑफ नेचर स्कल्पचरिंग मैन, implacable in the passion of their will, lifting the hammers of titanic toil, the demiurges of the universe work. Demiurges कौन है? उनको बस इतना काम दिया गया है भगवान ने, तुम इसको देखना, ठोका पीटी तुम्हारा काम है, बस आप वो शुरू हो गया, उनको मेटीरियल वहां आया, परफेक्ट है कि नहीं, टूटा नहीं टूटा, फेंक दिया उन्होंने, दैट्स हाउ दे डू इट। They shape with giant strokes their own, their sons are marked with their enormous stamp of fire. Although the shaping god's tremendous touch is torture unbearable to mortal nerves, the fiery spirit grows in strength within and feels a joy in every titan pang. Arjun ki baat ho rahi thi, bahut inspiring character hai, agar aap padhe unka kaise wo training karte the. Arjun ke bare mein kaha jata hai ki jab sab log training ke time to training karte the, par jab sab log so jate the to Arjun raat ko jaag karke धनुर्विद्या की प्रैक्टिस करते थे। इसलिए अर्जुन एकमात्र ऐसे कैरेक्टर हैं अदर देन लक्ष्मण जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने निद्रा पे विजय पा ली थी। ऐसे वॉरियर थे कि उनको फटीग नहीं आता था, ही वाज ए एक्स्ट्रॉर्डिनरी वॉरियर। अगर लॉन्ग टर्म कॉम्बैट होता, एक मान लीजिए आप एक दिन पूरा युद्ध चल रहा है, 2 दिन चल रहा है, अर्जुन वॉज द ओनली वॉरियर हु कुड फाइट बिकॉज ही कुड फाइट विदाउट स्लीपिंग। ऐसे नहीं श्री कृष्ण कह देते कि मेरी विभूति है, ऐसे ही बन गए विभूति, ही इज ए मास्टर। लेकिन उसके पीछे उन्होंने जो प्रैक्टिस की है जिस तरह से, तो और गुरु के प्रति विनम्रता की, ही वॉज कंपेल्ड टू गिव एवरीथिंग टू हिम। तो पेन इज द हैंड एंड फील्स ए जॉय इन एवरी टाइटन पैंग, ही हु वुड सेव हिमसेल्फ लिव्स बेयर एंड काम, ही हु वुड सेव द रेस मस्ट शेयर इट्स पेन, दिस ही शैल नो हु ओबेज दैट ग्रैंडियोज अर्ज। ग्रैंडियोज अर्ज क्या है? संसार सुंदर बनना चाहिए। भगवान कहते हैं आई श्योर, हाँ भगवान देखिए ना इधर हो रहा है उधर हो रहा है, चल तू आ जा सुंदर बनाएगा संसार, हाँ बनाऊंगा, आ जा उनकी लेबोरेटरी में, देखो भगवान यहां हो रहा है, तू सुंदर बनाएगा ना, हाँ भगवान वो देखे, नहीं नहीं स्टार्ट विद योर सेल्फ, अब शुरू हो गया काम, अब शुरू कर तू काम, तेरे अंदर में दिखाता हूं कि तेरे अंदर क्या है जो असुंदर है, अभी तक तो तू संसार सुंदर बनना चाहिए। अब जैसे ही वो शुरू होता है तो यू मस्ट शेयर द पेन। पहचान क्या होती है जो व्यक्ति ने अपने ऊपर काम किया है, एक जिसने योग साधना या जो भी आप कहें, इट्स ए वर्ड, आपने अपने ऊपर वर्क किया है, और एक दूसरा व्यक्ति जिसने नहीं काम किया है, उसकी एक पहचान इससे होती है, माँ बताती है, मैं नहीं कह रहा हूँ, बट इट्स सो ट्रू दैट जिसने अपने ऊपर काम किया ही डेवलप्स ए जेनरस एंड सनी टॉलरेंस टूवर्ड्स अदर। उसको पता होता है कि भैया इतना आसान नहीं है, और जिसने अपने ऊपर काम नहीं किया वो ये तुच्छ मनुष्य, वो ये क्या है, साधक है, साधक तो मैं हूं, उसने अपने ऊपर कुछ भी काम नहीं किया, वो जानता भी नहीं कि उसके अंदर क्या है, लेकिन जिसने अपने ऊपर काम किया है, आप यहां पुराने साधकों को अगर देखें तो यू विल सी दैट ट्रेमेंडस ह्यूमिलिटी, ट्रेमेंडस कॉम्पैशन। आप पढ़े पवित्र दा के रेमिनेंसेंसेस, व्हाट डिफिकल्टीज दे यूज्ड टू अंडरगो, क्योंकि जब वो काम करते हैं ना तब उनको पता चलता है कि इतना सरल नहीं होता है एक मनुष्य, तब वो ये इसकी बुराई उसकी बुराई ये सब देखना बंद हो जाता है, बिकॉज उनको पता होता है भैया हम अपने को सुधार लें बहुत बड़ी बात है। सो दिस इज हाउ द होल थिंग इज, द ग्रेट हु केम टू सेव दिस सफरिंग वर्ल्ड एंड रेस्क्यू आउट ऑफ टाइम शैडो एंड द लॉ मस्ट पास बीनीथ द योक ऑफ ग्रीफ एंड पेन, दे आर कॉट बाय द व्हील दैट दे हैड होप टू ब्रेक on their shoulders, they must bear man's load of fate. यही तो अवतारों की महिमा है, सच्चे विभूतियों की। अवतार जो जन्म लेते हैं, राम जी भगवान है, भगवान है, माता सती को भी धोखा हो जाता है कैसे भगवान है, ये तो बिलख रहे हैं, हाय सीते पत्ती से पूछ रहे हैं उससे, इनको तो डिटैच्ड होना चाहिए। शिव जी से कहते हैं आपको क्या हो गया, इनको प्रणाम किए जा रहे हो, आप जैसे डिटैच नहीं है ये। शिव जी कहते हैं कि सती अभी तो बोल नहीं, एक समय आएगा जब मैं भी विलाप करके पूरे विश्व ब्रह्मांड में घूमूंगा तेरी मृत देह को लेकर के। कहते ये कोई मनुष्य है, ये तो मनुष्य है साधारण, इनको भगवान कौन कह रहा है, आपको भ्रम हुआ है। तब वो कहते हैं माता सती को कि मेरा भ्रम तो रहने दे, लेकिन तुझे जो भ्रम हुआ है उस भ्रम को तो हटाना बहुत कठिन है। यही तो सारी कहानी, जयंत को भी यही भ्रम होता है, उनको भ्रम होता है, रावण को भ्रम होता है, लेकिन रावण बहुत स्मार्ट है तो वो क्या करता है अपने एक एक सबको भेजता है कि अगर भगवान है सब वीरगति को मुक्ति प्राप्त करेंगे लास्ट में, चाहूंगा भगवान नहीं है तो इनको तो मेघनाथ कुंभकर्ण को भी मार डालेगा। तो इज अ वेरी स्मार्ट मैन, डजंट गो हिमसेल्फ, कहते हैं कि अगर बाई चांस वो कम से कम एक गुंजाइश रखता है शायद भगवान हो, लेकिन बाकी सारे तो ये सोचते हैं। तो माता सती जब आती हैं तो इस डिस्क्राइब शिव टर्न्स अवे बिकॉज दिस इज कॉल्ड अविद्या। अविद्या वो नहीं है जो आप भेद करते हैं दो चीजों में कि इधर ये है और इधर, अविद्या वो है कि जो वह चीज जो सब चीज के अंदर वननेस को ढूंढ लेती है, दैट इज विद्या। विद्या और अविद्या का भेद ऐसे नहीं होता कि आप एक लाइन ड्रॉ करके कुछ चीजें इधर है कुछ चीजें उधर है। विद्या वो आंख है जो हर चीज के पीछे वननेस को ढूंढ लेती है। तो तब वो बताते हैं कि देखो, क्योंकि जब वो माता सती जाती हैं भेष बदल के सीता का, तो प्रणाम करते हैं राम जी, कहते हैं प्लीज शिव जी भी रो रहे होंगे आपके बिना, मुझे ही अकेले बिलखने दीजिए। अब इस लीला को आप कैसे समझेंगे, श्री कृष्ण की लीला सारी, ये दे हैव टू फेस, ये केवल लीला नहीं है। श्री अरविंद कहते हैं इट इज इन ग्रिम अर्नेस्ट, उनको 10 गुना अधिक, एक जगह अपने पत्र में श्री अरविंद कहते हैं कि एंड द मदर 10 times मोर देन मी, वो सारी पीड़ा कष्ट उन्होंने बेयर किया है, तभी तो हम तुमसे कह सकते हैं कि ये संभव है। अगर हमने इसको बेयर ही नहीं किया होता तो हम कैसे कह सकते कि ये संभव है। माता जी का बिछो, जब वो शेयरविंद यहां 22 फरवरी 1915 है, उसके बाद का आप पढ़िए जो इमीडिएट प्रेयर्स हैं, सॉलिट्यूड, हार्श सॉलिट्यूड, फिर आई डिसेंडेड इन टू हेल, अगर आप पढ़ेंगे तब आप मतलब पता चलता है कि रियली वॉट इट इज टू बी सेपरेटेड फ्रॉम योर बिलवेड। आप जब वो तो जगत जननी उस लेवल पे, जब शेयरविंद फिजिकल बॉडी से विड्रॉ करते हैं तो माँ कहती है आई वुड हैव लेफ्ट Can you imagine? 12 days तक she would have left. लेकिन वहां पे प्रणब दा नीचे से माँ माँ माँ. Then she sees my children are crying for me. Then she comes back कि मुझे ये काम सौंपा गया है. Otherwise she would have left. She understands कि human पीड़ा क्या होती है. तभी तो वो जानती हैं. नहीं तो वो तो आकर के बोल देती, बच्चा ये कर्मों का खेला, तेरे कर्म तू संभाल, अपनी मोह माया मेरे हुंडी में डाल बस, और मैं माला पहना दे, ऊपर बैठा दे. यही तो होता रहे. आप जाके देख ली, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है. जैसे पॉलिटिशियंस आगे लिख लिखा स्पीच, गांधी जी पे भी वही बोलेंगे, शेरविंद पर वही बोलेंगे, सब उनका लिखा हुआ है, डेट चेंज करके बोलते हैं. आप जाके देख लीजिए, सब लोग वही चीज बोलेंगे. ज्यादातर ये पीड़ा कष्ट क्यों है, कर्मों का लेखा चुका. अब एक ऐसी ब्लैंकेट चीज है जिसमें आप कुछ भी डाल दो. वो कह रहा है भैया मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूं. अब पुरजन्म में हो गया. अब आप पुरजन्म आपको मालूम नहीं, पूछना चाहिए. आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, आप तो पुरजन्म देख सकते होंगे. जरा बताइए हमारा क्या है पुरजन्म का भी कुछ हिसाब. अब उसमें भी ऐसी कहानी आ जाएंगी, 100 जन्म पूर्व आपने ऐसा किया था. स्टैंडर्ड फॉर्मेट. तो फिर हम क्या करें, ये मोह माया है तो क्या करना चाहिए. एकमात्र बस उनको भजो और वहां चले जाओ. तो यहां हमको किसने भेजा, बहुत तर्क करता है तू. उसके बाद ये एंट्री बैन हो सकती है. पर अगर आपने मोह माया अच्छे से दी है वहां पे, तो आप विशेष हो जाएंगे. नेक्स्ट टाइम मैं आपको रियल चीजें बता रहा हूं जो मैंने देखी है. यू गिव अ नाइस मोह माया, जिसको मोह माया कहा जा रहा है ना, आप उसको रिलीव कर दीजिए, अच्छे से चढ़ावा दीजिए. उसके बाद आपका नाम अनाउंस होगा. नेक्स्ट टाइम यू विल बी कॉल्ड एज ए स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर. सामने आपको बिठाया जाएगा, कहा जाएगा आप बहुत अच्छे हैं. तो ये सब चीजें, ये मिथ्यात्व का खेल. तो यहां श्री अरविंद हमको वो बता रहे हैं जो आज तक हमने कभी सुना नहीं. कितनी सुंदर बात है ये. भगवान ऐसे काम नहीं करते हैं, वो तो बैटल फील्ड में जाते हैं. वो ये नहीं कहते कि मैं यहां से लेक्चर. श्री अरविंद से किसी ने कहा ना, आप तो वहां बैठे हुए हैं, कहते हो ये समझते हो तुम मेरे जीवन के बारे में. आई हैव लिव्ड मोस्ट डेंजरसली. एक वर्ष तक जब तलवार लटकी हुई है ब्रिटिश एम्पायर की कि उनको भेज दिया जाएगा अंडमान निकोबार या फांसी, और वो अब पिछले जन्मों में भी एज दौंतौन मेनी अदर्स ही हैज फेस्ड इट. श्री कृष्ण बैटल फील्ड में निहत्ते बैठे हुए. ये नहीं कि वो उनको गीता का ज्ञान दे दिया, अर्जुन तू जाके लड़, डिटैच है ना, मर गया तो तू मरेगा नहीं. ये नहीं है गीता. गीता बैटल फील्ड पर दी गई है कि कर्म कर इस भाव से कर. जैसे हम इंटरप्रेट करते हैं, जहां हम व्यक्ति को पैराडॉक्सिकली अकर्मण्यता की ओर ले जाते हैं, वो तो ग्रिम अर्नेस्ट में कि यू हैव टू फेस द डेंजर ऑफ बैटल एंड डिफीट एंड डेथ, देन यू पास थ्रू टुवर्ड्स चेंज. और दे पे द गिफ्ट ऑफ नॉलेज विद देयर लाइव्स. Heaven's riches there they bring, their sufferings count the price. कोई देखता नहीं है इसको, लेकिन वो भी आता है. और they pay the gift of knowledge with their lives. This son of God born as the son of man. Socrates के बारे में कहा जाता है कि श्री अरविंद ही वन ऑफ हिज या तो इनकारनेशन या विभूति, आप जो भी कह लें, has drunk the bitter cup, owned Godhead's debt. क्यों? क्योंकि वो grandiose अर्थ, भगवान का काम करना है. तो भगवान का काम करना है तो भगवान कहते हैं अच्छा ऐसा कर, कुछ लोगों पे मेरा कर्जा है, जाके ये कर्जा उतार दे. विषपान कर सकता है? हाँ प्रभु, आपका कर्जा उतारूंगा. गॉडहेड्स डेट. गॉडहेड्स डेट क्या है? द डेट द इटर्नल ओज टू द फॉलन काइंड. अब देखिए इतनी पावरफुल बात है ये. भगवान ओन अप कर रहे हैं, आई एम रिस्पॉन्सिबल. ये होता है दिव्यत्व. जो आप पर टाल दे वो क्या दिव्यत्व. ही इज ओनिंग अप द डेट द इटर्नल ओज टू द फॉलन काइंड. अब देखिए इस एक वाक्य में, यू हैव फॉलन, आपने मेरे ऊपर एक कर्ज कर दिया, क्योंकि सृष्टि तो मैंने बनाई है ना, लास्ट बक विल स्टॉप देयर. तो जो सुप्रीम है वो उस डेट को स्वीकार करता है. हिज विल हैज बाउंड टू डेथ एंड स्ट्रगलिंग लाइफ दैट यर्न्स इन वेन फॉर रेस्ट And endless peace. Now is the debt paid, wiped off the original score. ये है श्री अरविंद का 5 दिसंबर का रहस्य. मनुष्य आप देखिए उनकी 47 के बाद वो जो सेकेंड वर्ल्ड वार की विभीषिका, वो पूरा वर्ल्ड वार के समय भी इनकॉन्शियंट में जा रहे हैं, वो देख रहे हैं कि मनुष्य तो ओपिनियन नहीं कर रहा है, तो ही प्लंज्ड इनटू द इनकॉन्शियंट। वो मनुष्य को क्या बोलेंगे, उसको तो पता भी नहीं इनकॉन्शियंट क्या होता है, उसके लिए तो इस सेमिनार का विषय है इनकॉन्शियंट एंड सुपर कॉन्शियंट। वो पढ़ लेगा श्री अरविंद के लेटर में से, अच्छा इनकॉन्शियंट ये होता है सुपर कॉन्शियंट, पाला पढ़े एक बार, देखे जरा वो महाअंधकार क्या है, कांप जाएगा जब वहां पाइथन्स और स्नेक्स और उसके परे महाअंधकार में प्रवेश करेगा। तो वो इनकॉन्शियंट का जो खेल है वो तो भगवान स्वयं चले जाते हैं उसमें, शिव की तरह हलाहल का पान करते हैं और फिर वो शरीर, नाउ इज द डेड पेड वाइप्ड ऑफ द ओरिजिनल स्कोर। सब मनुष्यों के लिए एकमात्र अकेले वो काफी हैं। तभी तो जब शेरविंद शरीर से विड्रॉ करते हैं, इसको आप अगर पौराणिक स्टाइल में ये कहानी लिखनी है तो आप कैसे लिखेंगे, ऐसी इसी चीज को पुराण में इस तरह से लिखा हुआ है ना कि जब भगवान ने देह छोड़ा तो सभी लोगों में प्रकंपन हो गया कि ये क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया, वो तो प्रभु की लीला देख रहे थे देवलोक में इत्यादि, तो सुपरामेंटल वर्ल्ड में भी ऐसा, अरे ये क्या हो गया। और वो उतर पड़ा और उनका स्पर्श करके, चरणों का स्पर्श करके वो महागंगा उतर गई और उनके देह में समा गई। दैट इज द डे द सुपरामेंटल डिसेंट टुक प्लेस। 29th फरवरी इज द मैनिफेस्टेशन, माने इसको स्पष्ट किया, द डे ऑफ द सुपरामेंटल डिसेंट इन मैटर फॉर द फर्स्ट टाइम, जब वो लाइट स्टे करती है, पहले वो टच करके चली जाती थी, इज 5th December 1950। नाउ इज द डेड पीरियड, क्योंकि सुपर माइंड नहीं, मनुष्य तैयार नहीं है, उसके अंदर ये कमियां हैं वो कमियां हैं, तो शेरविन जाके विषपान करके, अब भी कमी है ये प्रभु आप, द डेड द इटर्नल ओज टू द फॉलन काइंड, ही हैज साइंड सैल्वेशंस टेस्टामेंट विद हिज ब्लड। अब यहां जीसस क्राइस्ट की स्टोरी है, ही हैज ओपन्ड द डोर्स ऑफ हिज अनडाइंग पीस, द डेटी कंपेंसेट्स द क्रीचर्स क्लेम, द क्रिएटर बेयर्स द लॉ ऑफ पेन एंड डेथ, रेट्रीब्यूशन स्माइट्स द इनकार्नेट गॉड, His love has paved the mortal's road to heaven. He has given his life and light to balance here the dark account of mortal ignorance. एक कहानी है माता जी की, छोटी सी, बड़ी इलस्ट्रेटिव है। इसको आप सरफेस से देखें तो अजीब लगेगा। लोग इसको सरफेस से देख के, कोई मुझे बता रहा था, सरफेस से देख के क्या था, इट वॉज द पर्सन वॉज टेकिंग एज ए जस्टिफिकेशन कि क्या एक बार माता जी पीछे बैठी हैं और सामने एक जो ड्राइव करते थे पवित्रा दा, आम तौर पर कभी मृत्युंजय दा भी करते थे, तो वो जा रहे हैं और अचानक कोई कहीं पर पुलिस ने रोका और कुछ जो भी वार्तालाप हुआ, तो ही वॉज आस्किंग फॉर ब्राइब, ये अपना जो भी, तो माता जी थोड़ी देर बाद पीछे से शी टेक्स आउट 5 रुपी या जो भी था और वो उनको पकड़ाती हैं जो सामने जो ड्राइव कर रहे हैं, तो देखते हैं पीछे। एंड देन जो स्टोरी मैंने सुनी है, कहीं नोटेड नहीं है, बट आई हैव एन डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस स्टोरी, तो वो उसको जो पुलिस वाला है वो लेकर के, एंड देन द कार इज फ्रीड। नाउ इस स्टोरी को यू कैन अंडरस्टैंड इन टू वेज, वन इज द सुपरफिशियल वे, अरे देखो ब्राइब देने में कोई बुराई नहीं है, नहीं मैं इसको ऐसे देखता हूं कि माता जी ने उस दिन निर्णय ले लिया था इस संसार में ये समाप्त हो जाना चाहिए, ये वो अचित अंधकार है ईविल जिसके मुख से वो गुजरती है, और उस कारण आज आप देख रहे हैं कि भारतवर्ष में डिजिटल हो रहा है, कितना करप्शन वगैरह अपने आप कम हो रहा है, क्योंकि संसार उस दिशा में जाएगा जब भगवान किसी चीज को फेस करते हैं। सेम थिंग विद श्री अरविंद, ब्रिटिश एम्पायर का विनाश किस दिन निश्चित हुआ, जिस दिन उन्होंने श्री अरविंद को कमर में रस्सी बांध करके लाल बाजार थाने ले गए, उसी दिन निश्चित हो गया था। और मैं नाम नहीं लूंगा पॉलिटिकल पार्टी का, लेकिन जिस दिन 1907 में सूरत कांग्रेस में श्री अरविंद ने कुछ तोड़ दिया था, वो श्री अरविंद कहते हैं कि आई गेव द ऑर्डर्स फ्रॉम बिहाइंड, उन्होंने कहा था कि इसको भंग करो, अब हम कोई बात नहीं है, दो भाग में चले जाएंगे। हाँ, तो वो पूरा उसी दिन से ये निर्णय हो गया था, क्योंकि ये भगवान का एक्शन होता है जब वो जेल में जाते हैं, जेल रिफॉर्म्स अबेर बाउंड टू कम, कि हमारी दृष्टि प्रिजनर्स को कैसे देखेगी, तो वो जो उनके स्टेप्स होते हैं, जब माता जी इस प्रकार से आ जाती हैं और यहां रहने लगती हैं, और बाद में वो जो भी पेपर्स आते हैं सी जस्ट साइंस द पेपर, उस दिन उन्होंने नारी के लिए एक नई नया उपाय खोज दिया था। तो भगवान बाहर से देखने से लगता है कि वो उसी चीजों से गुजर रहे हैं जो एक साधारण मनुष्य गुजरा है, लेकिन वो जहां जहां से गुजरते हैं, सावित्री में एक लाइन है, हिज एक्शंस लेफ्ट द फुटप्रिंट्स ऑफ ए गॉड, एक नया मापदंड वो सेट कर देते हैं और उस पूरी समस्या को जड़ में पहुंच जाते हैं। यही डिफरेंस होता है एक साधारण मनुष्य और एक, अब इसी चीज को वो आगे बढ़ते हुए बताते हैं, ए मिलियन वुंड्स गेप इन हिज सीक्रेट हार्ट, और भी है, बट व्हेन गॉड्स मैसेंजर कम्स टू हेल्प द वर्ल्ड एंड लीड द सोल ऑफ अर्थ टू हायर थिंग्स, ही टू मस्ट कैरी द योक ही केम टू अनलूज, ही टू मस्ट बेयर द पैंग दैट ही वुड हील, एग्जेम्प्ट एंड अनएफ्लिक्टेड बाय अर्थ स्वीट, हाउ शैल ही क्योर द इल्स ही नेवर फेल्ट। कहानी थी ना यहाँ किसी की, जो आए थे माता जी का दर्शन करने और जब उनको पता चला, ये नेक्स्ट पेज में टर्न कर गया हूँ, कि माता जी आज दर्शन नहीं दे रही हैं क्योंकि माता जी आज थोड़ी अस्वस्थ हैं, तो वो यही सोच के चले गए कि मैं नाम नहीं लूँगा किसका, बहुत बड़े कवि कि अरे आप कि ये भगवान एक बीमार कैसे हो गए, अरे बीमार हुए ताकि वो मनुष्य के लिए समस्या का हल ढूंढ सके। मैटर को उन्होंने, मैटर की सबसे ग्रिमेस्ट चीजें, शेरविंद कहते हैं एक जगह, देर इज नॉट अ, आई हैव माइसेल्फ सफर्ड फ्रॉम मेनी डिजीजेज, जो वो क्योर करते थे अपनी स्पिरिचुअल फोर्स से, और माता जी के बारे में कहती है माता जी, देर इज नॉट अ सिंगल डिजीज विद विच आई हैव नॉट सफर्ड, एवरी पॉसिबल डिजीज उन्होंने अपने शरीर के ऊपर ली इस तरह से। तो ये एक दूसरा उपाय है, He covers the world's agony with his calm. लोग आके, अरे वाह भगवान शांति दे रहे हैं। But though to the outward eye no sign appears and peace is given to our torn human hearts, the struggle is there and paid the unseen price. The fire, the strife, the wrestle are within. He carries the suffering world in his own breast. Its sins weigh on his thoughts. Its grief is his. तो जो भी इस संसार को, the who obeys the grandiose urge ये है, निर्वाण is not a grandiose urge. This world must become a beautiful home of the wonderful. If you want to obey this urge, then this is the path. वो बता रहे हैं कि you have to go the savior's way. तो savior's way is this, कि he takes संसार के सारे, एक जगह शेरविंद की aphorism है, there is not a sin of the world, yes, not an evil which is not your own sin. You discover it. तो उसका वो बताते हैं कि ये शुरू में जब इंसान एक सीमित दायरे में रहता है तो कहता है ये मैं बहुत पुण्य आत्मा हूं, तुम पापी हो। जब यूनिवर्सल नेचर में पहुंचता है कहता है ये तो सब मेरे ही अंदर है, बाहर कहाँ है, कौन सा ये है, तो उसको सबको अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और उसको जो भी वर्कआउट होता है उसके अंदर, फिर वो सारे संसार में वर्कआउट होता है। हर व्यक्ति जो इस योग में, इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए डिफिकल्टी एंड ए पॉसिबिलिटी। पहले माने कहा था इम्पॉसिबिलिटी, ऑल ऑफ यू रिप्रेजेंट एन इम्पॉसिबिलिटी, फिर लोगों ने कहा भगवान आपके सामने क्या इम्पॉसिबल है। सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन के बाद माँ कहती है, आई डोंट वॉन्ट टू बी सो हार्श, आई हैड सेड अर्लियर यू रिप्रेजेंट एन इम्पॉसिबिलिटी, बट नाउ आई विल से that you represent a difficulty and usi difficulty ke mark se jaake you release the possibility. The impossible is God's sign of things to be. So kyun, kyunki aapke andar kuch abhipsa hai, wo puri nahi ho rahi hai, to aap usko try kar rahe ho, it doesn't succeed. So impossibility is sense mein is God's sign of things to be. A million wounds gape in his secret heart. He journeys sleepless through an unending night. Even worse may be the cost, direr the pain. His large identity and all harboring love shall bring the cosmic anguish into his depths. The sorrow of all living things shall come. Bhagwan bhagte nahi hai. Sorrow of all living things shall come and knock at his doors and live within his house. A dreadful cord of sympathy can tie all suffering into his single grief and make all agony in all the worlds his own. सारे संसार की पीड़ा उठा करके बोझ लेकर के वो संसार को क्या दे रहे हैं? काम, पीस, ट्रैंक्विलिटी, लाइट, लेकिन खुद अपने अंदर उस अंधकार को वहन किए हुए हैं. He dies that the world may be new born and live. He must face the fight, the pang, who would conquer hell. और लास्ट बिट हम लोग पढ़ लें. अब वो कहते हैं लेकिन ये सब कहां से आया? तो नारद बता रहे हैं बड़े लास्ट बिट में इस पैसेज के. ए डार्क कंसील्ड होस्टिलिटी इज लॉस्ट इन द ह्यूमन डेप्थ्स इन द हिडन हार्ट ऑफ टाइम दैट क्लेम्स द राइट टू चेंज एंड मार गॉड्स वर्क. आप देखिए ये सारे होते हैं ना, ये सारे कथावाचन ये सब और बाकी चीजें भी होती हैं, जूम पर, इस पर साइंटिफिक मीटिंग्स होती हैं. आप कहीं नहीं देखेंगे इतने सारे डाउट्स जितने आप देखेंगे कि माताजी श्री अरविंद से लोग करते हैं. डार्क कंसील्ड होस्टिलिटी इज लॉस्ट. और श्री अरविंद इसीलिए वो कहते भी हैं कि मॉडर्न टाइम्स उत्तर देते जा रहे हैं एक ही प्रश्न को अलग अलग ढंग से. उनके अपने प्रिय शेरविंद एक बार भी ये नहीं कहते हैं कह दिया ना तुम्हें, अब तुम समझो बच्चा. नहीं, प्यार से समझा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं. आप पढ़िए कभी कॉरेस्पॉन्डेंस को इन अ सीक्वेंस, तो आपको जो जॉय आएगा ना उसमें. फिर वो ये भी कहते नहीं आप तो भगवान हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है आपकी कठिनाई. कहते हैं अच्छा तुम कह रहे हो मेरा जीवन एक शैम है. कहते नहीं मैंने ये कहां कहा प्रभु, तो और क्या कह रहे हो. यदि मेरे लिए वो कठिनाइयां रियल थी ही नहीं तो मेरा जीवन तो एक शैम था. तो जो कुछ मैं सबको बता रहा हूं वो तो झूठ है. दैट्स हाउ ही इज. वो एक जगह कहते हैं यू आर ऑलमोस्ट सेइंग दैट आई एम नॉट एन अवतार, आई डोंट केयर अबाउट इट बट. तो कहते नहीं 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 मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं आप अवतार हैं. कहते लेकिन जो तुम कह रहे हो उसका मतलब यही है लॉजिकली इस तरह से. तो वो करते हुए तो कोई चीज है हमारे अंदर, इट स्टैम्प्स स्टेन एंड डिफेक्ट ऑन ऑल थिंग्स डन टिल इट इज स्लेन, पीस इज फॉरबिडन ऑन अर्थ. देयर इज नो विजिबल फो बट द अनसीन इज राउंड अस, फोर्सेस इंटेंजिबल बिसीज, टचेस फ्रॉम एलियन रेल्म्स, थॉट्स नॉट अवर ओन overtake us and compel the erring heart, our lives are caught in an ambiguous net. ये जो लोग कहते हैं ना मैं spontaneously जीवन को, ये बड़ा भयानक ये spontaneous चीज है ना, वो कुछ भी भाव आ जाएगा आप उसमें चले जाओगे कि मेरे अंदर spontaneously आ गया. spontaneous चीजें दो तरह की होती हैं, जो rarest है वो भगवान की intuition, जो common है our lives are caught in an ambiguous net. तो इसलिए मनुष्य को विवेक दिया गया है जब तक चैत्य ना मिले. पहले विवेक द्वारा नीर शीर विवेक, देखो कि स्पॉन्टेनियस ठीक है लेकिन तुम्हारे लक्ष्य के साथ ये जा रहा है नहीं जा रहा है, और कैसे इसको लक्ष्य की ओर मोड़ लो. ये भी एक होता है कि उसके अंदर छिपे सत्य को, और जब चैत्य मिलता है तो उसकी लाइट में आप देखते हो. तो एम्बिगुअस नेट, a power opposed to the eternal will diverts the messages of the infallible word, contorts the contours of the cosmic plan. A whisper lures to evil the human heart. Whisper कैसे होती है? अरे कोई बात नहीं, सब तो भगवान है, बड़े जैसा आप होंगे वैसे उस हिसाब से आएंगे. All is God ऐसे लिखा है ना, शेयर ने लिखा है, एरर वगैरह कुछ नहीं होता है. हाँ करेक्ट, सब तो भगवान है, ऑल इज मदर. वो इस तरह से ल्योर. अच्छा आपको विश्वास नहीं भगवान में तो वो दूसरे ढंग से आएगा, वो अपना मार्ग ढूंढेगा. अरे क्या है लाइफ, लाइफ इज फॉर एंजॉयमेंट. थोड़ा इफ यू हैव सम फन तो थोड़ी कोई भगवान आपसे रूठ जाएंगे, तो बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं. आपको अनेकों प्रकार से ल्योर करेगा. इसका मतलब ये नहीं कि हम एकदम स्टिफ कॉलर करके, वो भी तरीका नहीं, तरीका कुछ और है, वो बताएंगे बाद में. लेकिन अभी वो बता रहे हैं विस्पर ल्योर्स टू इविल, 100 जस्टिफिकेशंस देगा. जैसे एक हमारे सज्जन थे यहाँ पे, वो शेयर मार्केट में पैसा लगाते थे. अब माताजी ने मना किया है तो लोग कहते थे आप क्यों लगा रहे हैं, कहते नहीं जब पैसा बढ़ ज्यादा हो जाएगा तो मैं माँ को ही ऑफर करूंगा. करते चले गए, ही लॉस्ट हिज माइंड. तो एडमिट हुए, तो वहां पर उनकी ये हालत थी कि वो आश्रमाइट है, उनको जरूरत नहीं है कुछ. ऑब्वियसली एवरीथिंग इज फ्री इन एनी केस, वेदर यू आर आश्रमाइट और नॉट, नर्सिंग होम में वो तो नर्स आश्रम का है. तो एक दिन इडली मिली तो बुला के मुझे पूछते हैं इसका दाम कितना है. मैंने कहा क्यों, बोले नहीं मैं दे नहीं पाऊंगा, मेरे पास 10 रुपया भी नहीं है. मैंने कहा आप चिंता नहीं करिए, आपने दाम पहले दे दिया है. नहीं नहीं मेरे पास पैसा नहीं है. पता क्या, उनके पास 125 करोड़ रुपए थे. He didn't know and he had not even made a will. ये सिचुएशन. तो विस्पर लीड्स टू इविल. एक और दूसरे केस में वो बढ़ता रहा, वो भी बड़े खुश, दुगना तिगुना माता जी को देंगे. सडनली वो ऐसा क्रैश किया कि इट केम टू नियर जीरो, सब खो दिया उन्होंने. तो उसमें डिप्रेशन में चले गए. तो मैंने कहा आप ये सब क्यों कर रहे थे, कहते नहीं मैं सोच रहा था कि माता जी को दूंगा. तो मैंने कहा तो फिर आप इस भाव से कि माता जी के पास चला गया और आपने अपना लेसन ले लिया, कहीं तो गया वो पैसा, वैसे ही वो तो रियल तो था नहीं वो तो कल्पना जगत का पैसा था. इट इज द ओरिजिन, इट सील्स अप विजडम्स आईज, द सोल्स रिगार्ड. इट इज द ओरिजिन ऑफ अ सफरिंग हियर. इट बाइंड्स अर्थ टू कैलेमिटी एंड पेन. दिस ऑल मस्ट कॉन्कर हु वुड ब्रिंग डाउन गॉड्स पीस. दिस हिडन फोल लॉस्ट इन द ह्यूमन ब्रेस्ट मैन मस्ट ओवरकम और मिस हिज हायर फेट. दिस इज द इनर वार विदाउट एस्केप. To this we may add only one word. This all must conquer. Man must overcome or miss his higher fate. हम ये कह सकते हैं but there is grace. ये last में आता है सावित्री में. Calm eyes divine regard the human scene. There are hands that save. और है ये जो हम लोग next conclude करेंगे in the next reading. क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है तो इसमें जल्दबाजी की कोई आवश्यकता नहीं है. नमस्ते.